नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
दोस्तों, मैं हूं किशन और आज मैं आपको बताऊंगा आधे से ज्यादा स्मार्ट शहर बाढ़ के जोखिम वाले जिलों में शामिल हैं। देश में बाढ़ को सबसे जोखिम वाली आपदा के रूप में रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आधे स्मार्ट शहर बाढ़ के जोखिम वाले जिलों में आते हैं और ऐसे में इन शहरों का विकास इस चुनौतियों और जरूरतों के अनुरूप किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार 56% स्मार्ट सिटी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में है, जो कि भारत में 77% आपदाओं के लिए भी जिम्मेदार है। भारत के 642 जिलों के 98% में एक बार बाढ़ जरूर आती है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1,50,00,000 लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। साल 2017 में भारत में 1,56,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। इनमें से 3,16,185 लोग शारीरिक रूप से असक्षम थे। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि भारत में 2,200 शहर एवं कस्बे उन जिलों में मौजूद हैं जिन्होंने पिछले 18 वर्षों में कम से कम 11 बार बाढ़ का सामना किया है। निष्कर्षों में यह बात भी सामने आई है कि भारत के प्रस्तावित स्मार्ट शहरों में से आधे शहर बाढ़ की जोखिम वाले जिलों में आते हैं। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में बरेली और बिहार में बिहार शरीफ सहित विभिन्न राज्यों के 9 शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना में भी शामिल किया गया है।
मैं मधु आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे लचीला फसल ऋण और जलवायु बीमा योजना से छोटे किसानों के जीवन में बदलाव आ रहा है। केन्या देश में रहने वाले पीटर मार्क्सी के पास 10 बच्चे थे और उनकी सारी आय उन्हें खिलाने और स्कूल के फीस का भुगतान करने में ही खत्म हो जाती थी। पीटर की फसल की पैदावार छोटी थी और सारे परिवार के लिए राशन की जरूरत होती थी। चूंकि पीटर जानता था कि उनकी जमीन अधिक उत्पादक हो सकती है और वह अपने परिवार को भूख से बचा सकता है अगर उसके पास बेहतर गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीज और उर्वरक हो, लेकिन कोई भी उसे बीज और उर्वरक के लिए पैसे उधार नहीं देता था, क्योंकि उसके पास जो 2 करोड़ जमीन थी वह उसे उसके पिता से मिली थी, जिस कारण उस जमीन के कागजात उसके नाम से नहीं थे। 2009 में पीटर एक गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ में शामिल हो गया, जो बिना किसी जमीन के कागजात के छोटे किसानों को खेती के लिए ऋण प्रदान करती थी। जल्द ही पीटर की फसल में 6 गुना वृद्धि हुई, जिससे वो आज अपने बच्चों और पोते के लिए स्कूल की फीस का भुगतान करने में सक्षम है। उनके घर के लिए सौर लाइट खरीदते हैं और अपने खेत के लिए मुर्गियां और बत्तख खरीदते हैं। आज पीटर मार्क्सी कहते हैं कि हम जब खाना चाहते हैं तब खाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है। आज अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में 45 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को दुनिया भर में क्रेडिट के लिए लगभग 12,00,000 करोड़ रुपए के मूल्यों की जरूरत है और जहां वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं है। किसानों को अक्सर खतरनाक ग्राहक माना जाता है, क्योंकि उनकी फसल पूरी तरह जलवायु पर निर्भर करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसानों में निवेश करना उचित नहीं है। आज किसान केंद्रीय वित्तीय उत्पादकों के विकास के लिए एक मजबूत व्यापार की कुंजी है। आज बाजार का आकार बहुत बड़ा है। दुनिया भर में 45 करोड़ से अधिक छोटे मोटे खेती वाले घर हैं, जो कि 2 अरब से अधिक लोगों को उनके घरों में अनाज और उनके जीविका से संबंधित चीजें देते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में वित्तीय सेवाओं के लिए केवल 1/4 मांग पूरी हो रही है।
दोस्तों, मैं दीपक आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। मोदी सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भुगतान समय पर करने का दावा साबित हुआ गलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि देश के तमाम मनरेगा मजदूरों का मजदूरी भुगतान सही समय पर कर दिया जाता है, जबकि इस संबंध में की गई एक नई अध्ययन के मुताबिक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2017 के पहले 2 त्रिमाही मात्र 32% मजदूरों को ही सही समय पर उनकी मजदूरी का भुगतान हुआ है। ज्ञात हो कि मनरेगा अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी कार्य सप्ताह के खत्म होने के 15 दिन के अंदर मजदूरों का मजदूरी भुगतान करना अनिवार्य है, लेकिन इस स्वतंत्र अध्ययन के आंकड़ों से यह बात सामने आई है कि पिछले 2 त्रिमाही में लगभग मनरेगा के तहत 4.5 लाख लेन देन हुई है। बावजूद इसके सरकार मजदूरी भुगतान में देरी कर मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन कर रही है। इस योजना के तहत मजदूरी भुगतान प्रणाली को सरकार द्वारा केंद्रित कर दिया जाता है और राज्य सरकार चाहकर भी मजदूरों की मजदूरी भुगतान नहीं कर सकती। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार कार्य सप्ताह पूरा होने पर ब्लॉक या पंचायत स्तर पर एक फंड ट्रांसफर ऑर्डर तैयार किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत मजदूरों का मजदूरी भुगतान सीधे मजदूरों के बैंक खाते या डाक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन अगर इसी तरह से काम होता रहे तो वास्तव में मजदूरों का मजदूरी भुगतान समय पर नहीं होगा। इस अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इस पर ध्यान देने के बजाय भुगतान याचिका को कहते हुए रद्द कर दिया है कि राज्यों ने ऑडिट रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं सौंपा है, परंतु अध्ययनकर्ताओं के अनुसार गलती राज्य सरकार की है और इसका खामियाजा गरीब मजदूर भुगत रहे हैं। गलती किसी की भी हो, लेकिन यह बात सत्य है कि इस योजना के तहत मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। फिर भी गरीबों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और इस आशा से काम कर रहे हैं कि किसी न किसी दिन सरकार इनकी बातें सुनेगी और इस दिशा में उचित कार्रवाई करेगी।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।